सरस्वती नमस्तुभ्यं वर्धयिकां रूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। दात सांग मई सरस्वती माता की जय। सरस्वती की प्रतिकृति परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सभ्य आत्माओं द्वादशांग के अंश को निकाल निकाल करके हम सबको मक्खन की तरह प्रदान करने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की छत्र छाया में हम ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को प्राप्त करते हैं, उनका स्वाध्याय करते हैं, जिससे निश्चित रूप से एक बार चिंतन करने की आवश्यकता हो जाती है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और किस किस प्रकार से अनादिकाल से हमने संसार के अंदर परिभ्रमण किया है। तो आपने जाना कि संसार में गतियां कितनी हैं? चार चार गति हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो सर्वप्रथम नरक गति की बात आई है कि नरक गति में कौन कौन लोग जा सकते हैं, क्योंकि नरक के दुखों को सब जानते हैं, भले ही याद नहीं है लेकिन न जाने कितनी बार नरकों में जाकर आए और असह्य दुखों को सहन किया। यहां बताया कि असैनी पंचेंद्री तिर्यंच पहले नरक तक जा सकते हैं, इससे नीचे के नरकों में नहीं जा सकते क्योंकि उनकी शक्ति नहीं है, इतना अधिक पाप में नहीं कर सकते। और दूसरा सरीसृप यानी जल में रहने वाले सांप दूसरे नरक तक जा सकते हैं, इससे आगे उनकी योग्यता नहीं है। आप आगे का विषय देखिएगा, आपको पीडीएफ के द्वारा विषय भेजा गया है। पक्षी गण कदाचित नरक जावे तो तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं। पक्षी माने आकाश में उड़ने वाले पंख वाले जीवों को पक्षी कहते हैं, ये पंचेंद्री होते हैं। तो ये मरकर अगर नरक में चले जाते हैं, कोई संबोधन उन्हें करने वाला नहीं हुआ या उनके शुभकर्म का उदय नहीं आया, पाप कर्म का उदय चल रहा है, नरक में जाते हैं तो तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते। नरकों की व्यवस्था नीचे नीचे है, जिन्हें अधोलोक के अंदर सबसे पहले खर भाग पंख भाग है, जहां पर भवनवासी और व्यंतर देवों के भवन बने हैं। उसके बाद सात नरक की व्यवस्था चालू होती है, सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सबसे नीचे सातवां। और तीन लोक की रचना के अंदर दिखाया जाता है सातवें नरक के भी नीचे निगोद, जहां ये जीव एक सांस में 18 बार जन्म मरण करके अपनी पर्याय को व्यतीत करता है, कोई संबोधन करने वाला रहता नहीं और कदाचित कभी उन्हें स्वयं ही कर्म का संयोग मिलता है तो वे वहां से निकलते हैं। तो ऊपर से नरकों की व्यवस्था चली और स्वर्गों की व्यवस्था नीचे से ऊपर को चलती है, यानी मध्य लोक के ऊपर में जब स्वर्ग की व्यवस्था चलती है तो सबसे पहले 16 स्वर्ग, फिर ऊपर 9 गृहयज्ञ, फिर 9 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर, इस प्रकार से व्यवस्था चलती है। तो आपको आज जो आज विषय प्रारंभ करती हूँ, तो इसमें क्या हुआ कि पक्षी गण यदि नरक में जाते हैं तो तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं, यही इनकी योग्यता है। इससे आगे के नरक में जाने जितना पाप ये नहीं कर सकते। अब और आगे, क्योंकि पहले नरक में जाने की बात कही है, नरक गति को पहले लिया और फिर नरक में कौन कौन से जीव किस प्रकार की पाप करके कहाँ तक जा सकते हैं इस बात को लिया है। सर्प चौथे नरक तक जा सकते हैं, इससे नीचे नरकों में नहीं जा सकते। सांप डस लेते हैं, नाग नागिन अजगर ये खा भी लेते हैं, बड़े बड़े पशुओं को मनुष्यों को एकदम निगल भी जाते हैं। तो वे सर्प ऐसा पाप करते हैं जिससे चौथे नरक तक जा सकते हैं, और इससे नीचे पांचवें छठे सातवें नरक में सर्प नहीं जा सकते। और शिव के लिए कहा, जो सबसे ज्यादा पाप करने वाला माना जाता है, उसका तो भोजन ही मांस होता है और किसी न किसी को मार करके हमेशा खाता है, उसके लिए कहा कि शिव कितना ही अधिक पाप क्यों ना करे, किंतु वह पांचवें नरक तक ही जन्म ले सकता है, छठे या सातवें में नहीं। ये कर्म सिद्धांत है, ये हीरे का कांटा है, इसको आपको जरूर जरूर जान लेना है। जानने के बाद अपने मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का चिंतन करना है। तो क्या 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 कहा कि शिव अधिक से अधिक पाप क्यों ना करे, लेकिन वो पांचवें नरक तक ही जन्म लेता है, उससे नीचे नहीं। स्त्रियां अधिक से अधिक पाप करके भी छठे नरक तक ही जा सकती हैं, सातवें में नहीं, क्योंकि उनके उत्तम संगणन का अभाव है। यानी उत्तम संगणन, वज्र सब नाराज, वज्र नाराज नाराज संगणन, ये उत्तम संगणन कहे गए हैं। और उत्तम में उत्तम वज्र सब नाराज संगणन, जिस संगणन के द्वारा मोक्ष जाने की शक्ति रहती है, उस संगणन से मनुष्य नरक में भी सातवें नरक तक भी जा सकते हैं। तो स्त्रियों के लिए क्या कहा कि छठे नरक तक ही जा सकती हैं। बहुत है, छठा नरक कोई कम नहीं है, लेकिन उनकी स्त्री पर्याय की अपेक्षा कहा गया, चाहे चतुर्थ काल है पंचम काल है जो भी है, लेकिन स्त्रियों के लिए ये सिद्धांत जो दिव्य ध्वनि के द्वारा भगवान महावीर और गौतम गणधर स्वामी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, उसी सिद्धांत को धवला आदि ग्रंथों से निकाल निकाल करके छोटी सी पुस्तक के अंदर नदी के जल को एक छोटी सी शीशी के अंदर भरने के समान पूज्य माता ने ये छोटी पुस्तक आपको दी है, कि इसके द्वारा आप षट खंडागम के कर्म बंध के विषय को, बंध स्वामित्व विषय की प्रकरण को आप जान लें। तो स्त्रियों की बात जानी, यानी पहले नरक से लेकर सातवें नरक तक जाने वाले जीवों की योग्यता का इसके अंदर वर्णन किया गया। स्त्रियों की बात हुई कि सातवें नरक में स्त्रियां नहीं जा सकती, उसका हेतु दिया है क्योंकि उनके उत्तम संगणन का अभाव। अब पुरुष और मत्स्य सातवें नरक तक गमन करने की शक्ति रखते हैं। पुरुष क्योंकि द्रव्य पुरुष वेद से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उत्तम संगणन वाले पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्यों के लिए भी कहा कि सबसे अधिक पाप कर सकते हैं तो उत्तम संगणन वाले मनुष्य ही पाप कर सकते हैं, जो कि सातवें नरक तक जाने में सक्षम है। देखो शुभम चक्रवर्ती, ये चक्रवर्ती से ज्यादा तो शक्ति किसी की नहीं होती। शुभम चक्रवर्ती, उसने नमोकार मंत्र के अपमान के कारण सातवें नरक की के दुखों को प्राप्त किया। अब उसके साथ में कहा कि मत्स्य भी, ये कौन सा मत्स्य, साधारण मत्स्य नहीं। इसके लिए कहा है कि स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले महामत्स्य और उसके कान में रहने वाले तंदुल मत्स्य यदि हिंसा करते हैं, या तंदुल मत्स्य जो कि सभी जीवों के खाने का भाव ही किया करता है, तो ये मत्स्य हिंसा के अभिप्राय से सातवें नरक में भी चले जाते हैं। सातवें में ही जाए नहीं, उनके पाप की बहुलता के कारण। तो कितनी बड़ी बात है कि जो स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर 1 लाख योजन विस्तार वाला महामत्स्य रहता है, और उसके इतना बड़ा शरीर है कि उसके शरीर के ऊपर कई कई टापू बन जाते हैं। उसके कान के अंदर एक मत्स्य रहता है, तंदुल मत्स्य, जो महामत्स्य के कान के मैल को हमेशा खाता रहता है। उसी से पेट भरता रहता है। लेकिन वो देखता है कि कितनी सारी छोटी छोटी मछलियां आई, जल के और भी जंतु आए, और महामत्स्य अपने हिसाब से खाता है। लेकिन तंदुल मत्स्य उनको देख देख करके कहता, मैं तो होता तो न जाने कितने जीवों को खा लेता। ऐसी भावना करके खाता भी नहीं, लेकिन भावना करता है, भाव हिंसा के कारण वह तंदुल मत्स्य सातवें नरक में भी चला जाता है। इस अपेक्षा से मत्स्य को भी लिया है कि ऐसा तंदुल मत्स्य या महामत्स्य जो हर वक्त हिंसा में तत्पर रहता है, सभी जीवों के खाने का भाव ही किया करते हैं। पेट तो जितना भरता है उतना भरता है जितना खाने से, लेकिन भाव बहुत रहता है। जैसे है ना, जितना परिग्रह लिया, जितना काम हुआ, लेकिन परिग्रह संचय 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 करने की भावना रहती है। किसलिए का मूर्छा परिग्रह, परिग्रह में मूर्छा रखने वाले को ही नरक आयु आदि का बंध होता है। बाकी तो सबसे ज्यादा परिग्रह चक्रवर्ती के पास होता है। लेकिन अगर वे अपनी आत्मा पर ध्यान करते हैं, सद्गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो ऐसे चक्रवर्ती स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण है कि गृहस्थ में रहते हुए भी उन्होंने आत्मा का चिंतन सदा किया, तो उनको केश लोच करते करते भी केवल ज्ञान हो गया, और नरक में जाने वाले भी शुभम चक्रवर्ती जैसे भी रहे। यह उनके उत्तम संगणन का सदुपयोग और दुरुपयोग है। जिसने सदुपयोग कहा किया तो वह स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक सुक्ति बड़े बचपन में सुना करते थे, मरे राज्य में नरक लहाए। जो राज्य में राज्य की इच्छा के साथ मरते हैं वो नरक चले जाते हैं, और जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके अपनी पर्याय का सदुपयोग करते हैं और छपक श्रेणी चढ़ करके मुनिराज की अवस्था में कर्मों का नाश करते हैं, तो वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेते हैं। आपने पहले नरक से लेकर सातवें नरक तक की व्यवस्था को जाना कि कौन कौन उसमें जा सकते हैं। तो सातवां नरक किसके पल्ले पड़ा? उत्तम संगणन वाले मनुष्य और अति हिंसा करने वाले मत्स्य, महामत्स्य और तंदुल मत्स्य जैसे महान हिंसक प्राणी। यानी अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा हिंसा सिंह करता है, तो उसके लिए भी सीमा बना दी है कि सिंह कितना ही पाप करे पांचवें नरक तक ही जा सकता है, छठे नरक में भी नहीं जा सकता। जबकि स्त्रियों के लिए कहा कि छठे नरक तक जा सकती हैं। तो ये योग्यता की बात है, और ये जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को हम काट नहीं सकते, ये अटल सिद्धांत होते हैं। तो इन अटल सिद्धांतों को कर्मों के माध्यम से जानने के लिए हमने ये पुस्तक, जो महाग्रंथ का स्वरूप होता, ऐसी पुस्तक को आपको पढ़ाने का निश्चय किया। तो आप कहते हैं कि ये तो हुई नरक गति में जाने वालों की बात, अथवा नरक गति में जाने के ये दो ही गति रूप द्वार बताए हैं। सार क्या निकला कि नरक गति में मनुष्य या तिरिंच ही जाते हैं। नरक गति के दुखों को भोग करके पुनः नरक गति में नहीं जा सकते, यानी नरक गति से नरक गति की प्राप्ति नहीं होती है। और कोई देवता भी मर करके नरक नहीं जा सकते, वैकृत शरीर से वैकृत शरीर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बचती हैं दो ही गतियां जो नरक में ले जाने के लिए कारण है। तो ये नरक गति में जाने के जो द्वार हैं, ये आपको बताया गया। संक्षेप में एक बार रिविजन करेंगे कि पहले नरक में असैनी, पंचेंद्री, तिर्यंच की योग्यता बताई कि पहले नरक तक ही जा सकते हैं। यानी अन्य नरकों में भी लोग जाते हैं, अन्य लोग भी पहले नरक में जाते हैं, लेकिन ऐसी योग्यता बताई है कि असैनी, पंचेंद्री, तिर्यंच पहले नरक से नीचे नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ विशेष। बाकी तो जब कर्म कांड के अंदर जाएंगे, लब्धि सार, छपना सार में जाएंगे, और मुख्य रूप से षट्खंडागम के जो बंध स्वामित्व विचय अधिकार में, यानी आठवीं पुस्तक में, जहाँ कर्म बंध का ही प्रकरण है, वहां पर ये चीजें बहुत ही अच्छे डिटेल में आती हैं। ये कहा कि सरीसृप जो है वो दूसरे नरक तक ही जा सकता है, तीसरे नरक में नहीं जा सकता, और बहुत से प्राणी पहले नरक दूसरे नरक में जाते हैं, पर मुख्य योग्यता बताई गई है कि मनुष्य और तिर्यंच दो ही मर करके अगर पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं। ये नहीं है कि ये नरक में ही जाते हैं, ये भी नरक में जाते हैं, तो इतनी इतनी योग्यता इनकी है, इस बात को जानना। अरे अच्छे कार्य करते हैं तो पशु और पक्षी भी अगर नमोकार मंत्र सुनते सुनते शांत भाव से प्राणों को तजते हैं स्वर्ग में चले जाते हैं। देखो कुत्ते का जीव हम सुनते हैं कि मरणासन्न अवस्था में था और जीवंधर कुमार ने बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए नमोकार महामंत्र सुनाया, शांति मिली उसे और शांत भाव से उसने प्राणों का त्याग किया तो सुदर्शन यक्षेंद्र हो गया, वो बेंतर जाति का देव हो गया। तो ऐसे देवता की पर्याय में भी चले जाते हैं। एक सिंह को जब मुनिराज ने संबोधन किया कि तो आगे जाकर अहिंसा का अवतार होने वाला है, तो उसने हिंसा का पूरी तरह से त्याग कर दिया और जाकर के स्वर्ग में उत्पन्न हो गया, वैमानिक स्वर्गों में उत्पन्न हो गया, कल्पवासी देवों में उत्पन्न हो गया। तो मनुष्य और तिर्यंच देवता भी बनते हैं, लेकिन अगर नरक में जाएंगे तो उनकी योग्यता यहाँ पर निश्चित की गई है। पक्षीगण को कहा कि वे मर करके अगर नरक में जाएंगे तो तीसरे नरक तक जाएंगे। देखो एक जटायु पक्षी की बात सुनते हैं अपन कि किस प्रकार से उसे पूर्वों का जाति स्मरण हो गया। दंडक वन के अंदर जब आहार देख रहा था और एकदम उस आहार को देखते देखते जाति स्मरण हो गया कि कभी मैंने इसी वन के अंदर, यहाँ पर बहुत बड़ा राज्य था और मैं राजा हुआ करता था, मैंने ऐसे मुनियों को घानी में पिलवा दिया था। आप पढ़ते हो अभिनंदन मुनि आदि 700 घानी पेल जुमारे, तब ऐसा पाप संचित कर लिया, न जाने कितने जन्मों में कष्ट को भोगता भोगता, कभी नरक में कभी तिर्यंच गति में जा जा करके, और अब जटायु पक्षी जो हुआ गृध पक्षी, वो मुनि की चरण के गंधोदक में आके एकदम फड़फड़ाता हुआ गिरता है और उसके पंख बिल्कुल सोने जैसे हो जाते हैं। सती सीता ने उसे अपने पास रखा, उसके पैरों में घुंघरू बांध करके उसे नचाया करती थी और जंगल में भी चलते चलते सब आनंद लिया करते थे। उसने फिर आगे मांसाहार का त्याग कर दिया, आगे जाकर के उसका भाव भी सुधर गया। तो जब पाप कर्म के उदय आते हैं नरक में जाते हैं, और पुण्य कर्म के उदय आते हैं शुभ शुभ कर्म करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, और पशु की पर्याय से भी आगे अपने द्वार खोल लेते हैं तो मोक्ष तक जाने की स्थितियां उनकी बन जाती है। जैसे भगवान महावीर ने शेर की पर्याय से 10वें भाव में जाकर महावीर का स्वरूप धारण किया, तो इन नरकों में फिर चौथे नरक तक कहा सर्प जा सकते हैं, पक्षीगण को कहा तीसरे नरक तक जाएंगे, और शेर को कहा पांचवें नरक से नीचे नहीं जा सकता, और स्त्रियां छठे नरक तक जा सकती हैं, और पुरुष उत्तम संगनधारी पुरुष और महामत्स्य तंदुल मत्स्य इनके अंदर सातवें नरक तक जाने की योग्यता होती है, क्योंकि उत्तम संगनन के साथ विशेष पाप करते हैं। भाव देखो, यानी कि हमेशा भाव अपने कितने अच्छे रखने चाहिए, भाव हिंसा भी होती है। तंदुल मत्स्य खाता नहीं है आने वाली मछलियों को, लेकिन भाव करता है कि ये खाता ही नहीं, कितना बेवकूफ है, और मैं होता तो सारी मछलियों को खा जाता। इतने भाव मात्र से सातवें नरक में जाने का बंद कर लेता है, गति बंद। ये जाने वाली बात आपने जानी है नरक गति में जाने की, कि कौन कौन जा सकते हैं। इसलिए आप में से कोई स्त्री है कोई पुरुष है, स्वाध्याय कर रहे हैं, जिज्ञासु स्वाध्यायी भाई बहन है, तो अपने को नरक में पहली बात तो जाना ही नहीं है, और जो जो जाते हैं उनके लिए भी भावना करनी है कि किसी के भाव नरक जाने जैसे ना बनने पाए, ऐसे बैर के परिणाम कभी भी नहीं करने चाहिए। आगे कल विषय चलेगा सातवें नरक वीर कि इन पहले से लेके सातवें नरक से निकले हुए जीव कहाँ कहाँ जन्म धारण कर सकते हैं, तो गति में जाने का, आपने पढ़ा नरक गति में जाने का, हम नरक गति से जा करके कहाँ कहाँ जन्म धारण करते हैं वो विषय आगे चलेगा।